आज है मार्च की पहली तारीख दिन बुधवार। सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। अमरीकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले भाषण को रिपब्लिकन्स ने सराहा, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने निराशा जताई। ट्रंप ने कहा, घृणा के खिलाफ अमरीका एकजुट है।
While we may be a nation divided on policies, we are a country that stands united in condemning.
चलेंगे वॉशिंगटन और जानेंगे कि चौतरफा आलोचना के बाद क्या ट्रंप का सुर बदल रहा है। सीरिया और इराक में फौजी शिकस्त मिली तो क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पैर फैलाएगा इस्लामिक स्टेट?
जो हजारों लोग इस रीजन से गए हैं और सीरिया और इराक में लड़ रहे हैं, अगर वो वापस आ गए तो इस्लामिक स्टेट साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में और मजबूत भी हो सकती है।
सुनिएगा दुनिया जहान में, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार कांग्रेस को संबोधित करते ही हाल ही में कैंसस में भारतीय इंजीनियर की हत्या और यहूदी प्रार्थना स्थलों पर हमले की निंदा की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अमरीका की महानता का नया अध्याय शुरू हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने ट्रंप के भाषण की जमकर तारीफ की है। वहीं सीनेट के नेता चक शूमर ने कहा कि ट्रंप ने अपने भाषण में ये नहीं बताया कि वो असल में करने क्या वाले हैं। हालांकि दुनिया भर में ट्रंप के भाषण के बाद शेयर बाजार सकारात्मक नजर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने ट्रंप के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रूस ट्रंप के बयान से ज्यादा उनके काम को देखने का इंतजार कर रहा है। तमिलनाडु में आज से हजारों दुकानदारों ने कोका कोला और पेप्सी बेचना बंद कर दिया है। दो ट्रेड यूनियनों ने दुकानदारों से विदेशी कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार करने और भारतीय ब्रांड के उत्पाद बेचने को बढ़ावा देने की अपील की है। इनका आरोप है कि एक तरफ किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां पानी और जल की आपूर्ति कर पा रही हैं। वहीं कोक और पेप्सी जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों के संगठन इंडियन बेवरेज एसोसिएशन ने दुकानदारों के फैसले को निराशाजनक बताया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दो आत्मघाती हमलों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है और करीब 35 लोग घायल हो गए हैं। एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के बाहर ये हमला हुआ है, जिसके बाद प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में घुसे चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चलती रही। दूसरा फिदायीन हमला अफगानिस्तान के खुफिया विभाग के कार्यालय को निशाना बनाकर किया गया है। सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के बाहर हमले के चश्मदीद एक दुकानदार मोहम्मद आलिम ने आंखों देखा हाल कुछ यूं बताया। वो कह रहे थे कि जब वो दुकान में मौजूद थे तब उन्होंने एक धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद उन्होंने देखा कि आग की लपटें वहां से उठने लगी हैं। ये थे मोहम्मद आलम जो अपनी बात कह रहे थे। तालिबान ने इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सैनिक प्रशिक्षण केंद्र पर हमले में करीब 35 लोग घायल हो गए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्रांसवा फियों ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी की दौड़ से हटने से इनकार कर दिया है। उन पर अपनी पत्नी और बच्चों को उन कामों के लिए सरकारी खजाने से भुगतान कराने का आरोप है जो उन्होंने नहीं किए थे। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू होगी और उन्हें अपना प्रचार अभियान बंद करने को भी कहा गया था। फ्रांसवा फियों इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होकर फ्रांसवा फियों ने न्यायपालिका पर राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अप्रैल में वोटरों का फैसला सौंपेंगे। पहले फियों काफी आगे बताए जा रहे थे, लेकिन अब दूसरे राउंड में मई महीने में उनका मुकाबला इमैनुअल मैक्रॉन से होगा। फ्रांसवा फियों ने अपनी बात यूं रखी।
Seul le suffrage universel et non pas une procédure menée à charge,
सार्वभौमिक मत और मेरे खिलाफ कोई आरोप लगाने की प्रक्रिया नहीं है और इसी से तय हो जाएगा कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं समर्पण नहीं करने वाला हूं, मैं अपनी उम्मीदवारी भी वापस नहीं लूंगा, मैं अंत तक लड़ूंगा। ये सब लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये थे फ्रांसवा फियों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन ने स्टील और कोयला उद्योग में करीब 5 लाख कर्मचारियों की छटनी करने का ऐलान किया है ताकि उत्पादन में कमी लाई जा सके। बीबीसी समाचार।
यह बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। आज आपके साथ मैं हूं राजेश जोशी। अमेरिका अभी कुछ ही घंटे पहले सोकर जगा है और कल रात अमेरिकी कांग्रेस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर चर्चा जारी है। कल रात यानी भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका में फैल रहे घृणा के माहौल की निंदा की।
Recent threats targeting Jewish community centers and vandalism of Jewish cemeteries.
हाल ही में यहूदी सामुदायिक केंद्रों पर हमले की धमकियां और यहूदी कब्रिस्तानों में की गई तोड़फोड़ या पिछले हफ्ते कैनसास सिटी में हुई गोलीबारी की घटना हमें याद दिलाती है नीतियों के मुद्दे पर हमारा राष्ट्र विभाजित भले ही हो लेकिन घृणा और शैतानियत की भद्दी शक्ल को खारिज करने में हम सब एक साथ खड़े होते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में गरीबी और बेरोजगारी की बात की और इसके लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
94 million Americans are out of the labor force. Over 43 million people are now living in poverty.
9.5 करोड़ अमरीकी बेरोजगार हैं। 4.3 करोड़ गरीबी में जिंदगी बिता रहे हैं। इतने ही लोग सरकारी रसद पर निर्भर हैं। 5 में से 1 आदमी काम करने की उम्र में काम नहीं कर रहा। पिछले 65 बरस में हमारी आर्थिक हालत में सुधार सबसे खराब स्थिति में है। पिछले 8 बरस में पिछले प्रशासन ने इतना कर्ज चढ़ा लिया है जितना अब तक सभी राष्ट्रपतियों ने मिलाकर भी नहीं चढ़ाया था।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर जो शको शुभा बना था उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने रोशनी डाली।
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of 2 world wars that dethroned fascism.
हम नेटो का मजबूती से समर्थन करते हैं। ये एक ऐसा गठबंधन है जो 2 विश्व युद्धों में एकजुट रहा, जिसने फासीवाद को उखाड़ फेंका और शीत युद्ध में साम्यवाद को हराया। लेकिन हमारे पार्टनर देशों को अपनी आर्थिक जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने ये शुरू भी कर दिया है और पैसा बरसने लगा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
जहां सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप के भाषण का स्वागत किया, विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लोगों ने इस पर असंतोष जताया। पार्टी के सांसद बॉब केसी।
एक ऐसा शख्स जो चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में भेद खड़ा कर रहा था, हो सकता है उसमें बदलाव आए, पर आज के भाषण में मैंने ये नहीं देखा।
मगर डेमोक्रेटिक पार्टी के ही डेनिस कुसिनिच मानते हैं, क्षमा कीजिएगा, डेनिस कुसिनिच मानते हैं कि ट्रंप को समय दिया जाना चाहिए।
President Trump's speech was aimed at trying to find some commonalities. Was aimed at trying to.
राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण में देश को एकजुट करने की कोशिश थी। उनके चुनाव प्रचार में ये बातें नहीं थी, हमें ये मालूम है। मगर डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग होनी चाहिए थी, जिसमें ये कहा जाता कि राष्ट्रपति का भाषण लोगों को बांटने वाला नहीं था। इस तरह का भाषण रोनाल्ड रेगन, बराक ओबामा या बिल क्लिंटन दे सकते थे। ये सभी राष्ट्रपति रहे और आज का भाषण एक राष्ट्रपति का भाषण था।
यानी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में कुछ आवाज़ें डेमोक्रेटिक पार्टी से भी आई हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC सीधे चलते हैं, हमसे बात करने के लिए फ़ोन पर इंतज़ार कर रहे हैं BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, अभी तो वहाँ सुबह होगी, मैं नहीं जानता कि आपकी नज़र अखबारों पर पड़ी होगी या नहीं पड़ी होगी। क्या कुछ आपको अंदाज़ा है कि अमेरिका का मीडिया, जिससे बड़ी एकदम खींचतान चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उसने उनके पहले भाषण पर क्या तनकीद, क्या टिप्पणी की है? कुछ अगर पढ़ पाए हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल पढ़ पाया हूँ राजेश। और देखिए, ज्यादातर अखबारों में यही बात निकल के आ रही है कि पहले के भाषणों के मुकाबले काफी पारंपरिक अंदाज का भाषण था। ट्रंप पूरी तरह से टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे हुए शब्दों पर कायम रहे और पहली बार कम से कम एक कोशिश नजर आई ये दिखाने की कि वो सिर्फ एक तबके के राष्ट्रपति नहीं है, पूरे देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शब्द और बोलने के अंदाज को अगर छोड़ दें तो जहां तक नीतियों की बात है, चाहे वो आप्रवासन नीति हो, दीवार बनाने की बात हो, विदेश नीति हो, आतंकवाद को चरमपंथी इस्लाम से जोड़ने की नीति हो, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं सुनाई दी। और कुछ हद तक थोड़ी नरमी जरूर थी लेकिन नीतियां वही थी। और साथ ही जो विश्लेषक है अखबारों के, उनमें यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कांग्रेस में जिस अंदाज में भाषण दिया जाना चाहिए था वो दिया, और ये उनकी खासियत है, उन्हें वो एक बहुत बड़े परफॉर्मर माने जाते हैं, और जिस तरह की ऑडियंस है उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब नजर आए।
उन्होंने कैंसस में भारतीय युवक की हत्या की निंदा भी की है, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन कैंसस किलिंग की बात उन्होंने कही। क्या इससे कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनके खिलाफ हैं ये आरोप उन पर लगाते हैं कि उनके ही प्रचार के दौरान ऐसा माहौल बन गया जिसकी वजह से कुछ लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।
देखिए, खासतौर से अगर हम भारतीय समुदाय की बात करें तो कुछ लोगों को एक सुकून मिला होगा, एक सांत्वना से मिली होगी कि अभी तक राष्ट्रपति ने उस बारे में कोई बात नहीं की थी और अब जाकर के उन्होंने उसका जिक्र किया है। लेकिन इतना जहर उगला गया है पिछले सवा डेढ़ साल में, और अभी भी जिस तरह की नीतियां आ रही हैं उससे वही लग रहा है कि ट्रंप अपनी बातों पर कायम है। तो एक इस बयान से कि हम घृणा कहीं भी कबूल नहीं है, नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ बदल जाएगा फिलहाल ये नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि एक थोड़ी सी शुरुआत हुई है। जो ट्रंप के जो कट्टर समर्थक हैं यहाँ पर, अगर हम भारतीय समुदाय की बात करें तो वो कह रहे हैं कि कम से कम उन्होंने ये बात की और ये उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो लोग उनकी नीतियों के खिलाफ हैं उन्होंने कहा है, और खासतौर से जो भारतीय मूल के सांसद हैं कांग्रेस में, उन्होंने कहा है कि इससे कुछ नहीं बदलने जा रहा है जब तक जमीन पर सचमुच वो कुछ करे ना,
और वो अपनी नीतियों पर कायम रहेंगे, ये अंदाजा है। ब्रजेश उपाध्याय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर भारत में अमेरिका जाकर रोजगार हासिल करने वालों में आशंका बढ़ रही है। दक्षिण भारतीय शहर हैदराबाद मूल के श्रीनिवास कुची भोटला की कैंसस में हत्या के बाद कल उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी ने हैदराबाद में कई लोगों से बात करके भेजी है ये रिपोर्ट।
हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर चिलकोर बालाजी मंदिर है, जो वीसा मंदिर के नाम से मशहूर है। लोगों का मानना है कि जो कोई इस मंदिर में प्रार्थना करता है उसको अमेरिका का वीज़ा ज़रूर मिल जाता है। मगर जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने रोज़गार के वीज़ा संबंधी नियमों में बहुत बदलाव किए, फिर भी इस मंदिर में भीड़ कम नहीं हुई। एक ही फर्क ये है कि लोगों की प्रार्थना में दो और प्रार्थना जुड़ गए हैं। पहली प्रार्थना ये कि जो भारतीय अमेरिका जाता है वो सुरक्षित रहें। दूसरी प्रार्थना सुनिए मंदिर के अनुवांशिक पुरोहित सीएस रंगराजन से।
हम लोग भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के मन में भी थोड़ा आलोचना की बदलाव आए, क्योंकि भारत से जो भी जाते हैं वो स्किल्ड लेबर है, दे आर नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स। भक्तों में जो प्रार्थना है कि आप थोड़ा हमारी सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करिए।
इस बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि कहीं उनको वीजा मिलने में रुकावट ना लग जाए या फिर अमेरिका पहुंचने के बाद कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। लेकिन फोरम फॉर आईटी प्रोफेशंस के किरण चंद्रा ने कहा,
द एंटायर आईटी कम्युनिटी इज इन अ शॉक दैट इंक्लूड द स्टूडेंट कम्युनिटी एंड आईटी प्रोफेशनल्स।
हमारे उद्योग में हर कोई हैरान है। आपको पता है कि हर कोई अमेरिका का सपना देखकर बड़ा होता है, पर अमेरिका में मारे गए श्रीनिवास की माँ चाहती हैं कि उनका छोटा बेटा अमेरिका छोड़कर लौट आए। श्रीनिवास पर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि नफरत का संदेश देने में सबसे आगे राष्ट्रपति ट्रंप ही हैं। ये थे किरण चंद्रा के शब्द। लेकिन किरण चंद्रा दो और अहम बात कहते हैं। वो यह कि भारत के छात्र अमेरिका के विश्वविद्यालयों को सालाना $2.5 अरब की फीस देते हैं। दूसरी बात ये कि भारत में अमेरिकी कंपनी मुनाफा कमाती है तो क्यों नहीं हमारे निवासी वहां काम करें। नए नियमों का असर छात्रों पर भी पड़ा है। बेंगलुरु की शिक्षा परामर्श कंपनी द चोपड़ास की CEO बिंदु चोपड़ा मानती हैं कि डर तो है ही, लेकिन एक नया दौर शुरू हुआ है।
स्टूडेंट्स कर कह रहे हैं कि अमेरिका अभी भी एप्लीकेशंस तो जा रही हैं, पर बैकअप ऑप्शंस रख रहे हैं, और बैकअप है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
मतलब यही कि लोगों की परेशानी दूर करने के लिए उपाय अमेरिका से आना चाहिए, पर वो कब आएगा इसका अंदाजा सिर्फ अमेरिका की सरकार ही लगा सकती है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
कोका कोला और पेप्सी लगभग घरेलू नाम हो चुके हैं हिंदुस्तान में, फिर भी इन अमरीकी कंपनियों का विरोध अलग अलग कारणों से होता रहा है। इस बार तमिलनाडु के दुकानदारों ने पेप्सी कोल का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। राज्य के व्यापारी संघ के अध्यक्ष वेल्लयन,
இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடின மாணவர்கள் இளைஞர்கள்
तमिलनाडु व्यापारी संघ के अध्यक्ष वेलयन कह रहे थे कि जिन नौजवान छात्रों ने हाल ही में जल्लीकट के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था उन्होंने कोक और पेप्सी की बोतलें तोड़ी और मांग की कि सभी अमरीकी चीजों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उनकी इन मांग से हम बहुत खुश हैं, इसलिए यह बहिष्कार किया जा रहा है। इस मुद्दे को और समझने के लिए मैंने बीबीसी तमिल सेवा के तंगवेल अपाची से बात की और पूछा, पेप्सी कोक के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों?
जनवरी में एक जल्लीकट के बारे में एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, ये बहुत नौजवान लोग थे शामिल होके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ,
सड़कों पर उतर आए थे लोग।
इसलिए उसी टाइम पे ये पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनिमल्स क्रुएल्टी के अगेंस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, वो अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने वो इसको जल्लीकट के बैन लगाया रखा है,
उन्होंने मांग की थी कि जल्लीकट पे बैन लगे,
इसलिए उसी टाइम पे वो पेटा के अगेंस्ट का वो बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। उसी टाइम पे वो ये पेप्सी और कोक के ऊपर भी ये कैंपेन शुरू हो गया।
उन्होंने कहा कि ये अमेरिका का संगठन है पेटा, और पेप्सी और कोक भी अमेरिका।
बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा। इसी के बारे में वो सारे एजिटेशन हुआ। उसी टाइम पे ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन में भी वो उनका समर्थन दिया, उनको पेप्सी और कोका कोला का बंद
बॉयकॉट करने के बारे में। तो आज से वो कह रहे हैं कि अब ये बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका असर कितना होगा? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है वो कह रहे हैं कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पेप्सी और कोक जो है वो चलेगा।
राजेश जी देखिए, अभी दो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडर्स का तमिलनाडु में, ये 10 लाख के ऊपर होगा वो मेंबर्स है, उनके उन्हीं के मेंबर्स तो सेल तो नहीं करेंगे, वो बंद करेंगे। फिर भी मैं वो 90% ऑफ द मार्केट जो है वो तो कोक और पेप्सी का है, 90% का वो 90% तो वो कैसे, ये 10% का वो लोकल मार्केट है, वो लोकल प्रोड्यूसर्स है, वो 90% का कैसे वो बराबर करते
हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही सिंबॉलिक या सांकेतिक चीज़ तो बन के नहीं रह जाएगी?
मेरे को लग रहा है ये तो लॉन्ग लास्ट नहीं हो पाएगा,
बहुत दिनों तक नहीं चलेगा,
क्योंकि ये अल्टरनेट प्लान नहीं है।
हाँ, तो ये इस तरह से सिंबॉलिक ही बन के रह जाएगा। लेकिन जो बेवरेजेस एसोसिएशन है, जो कंपनियां ये बनाती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उनका क्या कहना है?
ये बेवरेजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक बयान दिया है, ये मूव तो एंटी कंज्यूमर है, ये मेक इन इंडिया के खिलाफ है,
मेक इन इंडिया के खिलाफ है, ये बेवरेज एसोसिएशन वाले लोग कह रहे हैं। ये जानकारी दे रहे थे बीबीसी तमिल के तंगवेल अपाची। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आज है बुधवार और हर बुधवार को हम लेकर आते हैं दुनिया जहान। इस बार पड़ताल इस्लामिक स्टेट की। खुद को सीरिया और इराक की इस्लामी हुकूमत बताने वाला ये संगठन बहुत कम समय में मध्य पूर्व के बड़े इलाके पर काबिज हो गया और अब अफगानिस्तान तक फैल रहा है। पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान में कई ऐसे हमले हुए जिनके पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ होने का शक किया जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के सूफी संत शहबाज कलंदर की दरगाह पर हमले की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली है। सुनिए मोहनलाल शर्मा से कि ये संगठन अब अफगानिस्तान की ओर कैसे बढ़ रहा है।
दुनिया जहां January 26, 2015 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उसी दिन इस्लामिक स्टेट के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी ने अपनी खुरासान ब्रांच स्थापित करने की घोषणा की। खुरासान एक पुराना नाम है जिसके दायरे में अफगानिस्तान और आसपास का इलाका आता है। तब ये पहला मौका था जब इस्लामिक स्टेट ने अरब जगत से बाहर अपने पैर पसारने की आधिकारिक घोषणा की।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने संगठन की एक नई इकाई बनाई है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में काम करेगी।
घोषणा के कुछ हफ्तों बाद ही इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान के कम से कम 5 प्रांतों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। ये प्रांत थे हेलमंद, जाबुल, फराह, लोगार और नंगरहार।
अभी हम यहाँ तीन सूबों में मौजूद हैं, लेकिन हम लड़ाई सिर्फ एक सूबे में कर रहे हैं, बाकी सूबों में हम अपने कमांडर के अहकाम का इंतजार कर रहे हैं।
خلیفہ دے او قران دے او اسلامی نظام دے الحمدللہ خلافت راغ منگ دے طالبان نو وسو اسلامی خلافت سرم بیعت کلے دے او داغی قیادت کی جہاد کو الحمدللہ۔
بی بی سی پشتو سیوا کے سمواداتا داؤد اعظمی سے میں نے پوچھا کہ دو سالوں میں اسلامک سٹیٹ کو افغانستان میں اپنا دائرہ بڑھانے میں کامیابی ملی یا پھر پچھڑنا پڑا۔
دو سالوں میں اس گروپ نے بہت کوشش کی کہ اپنے لیے کوئی ٹیریٹری بنا سکے اور وہاں پہ اپنے لیے کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر بنا سکے۔ افغانستان کے ایسٹ میں ننگرہار صوبے میں انہوں نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان کے ہلمند اور فراہ میں کنٹرول حاصل کر لیں، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ افغان طالبان بھی ان کے خلاف تھے اور اب بھی ہیں، اور افغان حکومت نے بھی اور نیٹو اور امریکی ملٹری نے بھی ان کے خلاف ملٹری آپریشنز کیے۔ تو اب اس کی حالت یہ ہے کہ ناردرن پروونسز میں بھی کچھ چھوٹے سے گروپس ہیں، لیکن اصل طاقت ننگرہار صوبے میں ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ بہت قریب ہے، اس کے ساتھ بہت نزدیک ہے۔
اسلامک اسٹیٹ اسی افغانستان پاکستان میں پیر پسارنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ طالبان اور القاعدہ کا گڑھ مانا جاتا ہے، لیکن جس زمین پر پہلے سے ہی اس طرح کے چرمپنتھی سنگٹھن کام کر رہے ہوں وہاں اسلامک اسٹیٹ کہاں سے آیا؟ ان چرمپنتھی سنگٹھنوں کی سوچ میں کتنا انتر ہے؟ مدھیہ پورو معاملوں کے جانکار قمر آگا کہتے ہیں،
طالبان جو ہیں یہ حنفی اسکول آف اسلامک تھاٹ کو بلیو کرتے ہیں، اور عرب دیشوں میں کافی انفلوئنس ہم کو جو نظر آتا ہے وہ ہے حنبلی اسکول آف تھاٹ کا، جس کا کہ وہابی سلفی آئیڈیالوجی ہے، اور یہاں پہ جو ہے دیوبندی آئیڈیالوجی ہے جو حنفی کی ہے، جو بہت اسٹرکٹ اسلام میں کام کرتی، مگر دونوں کا پولیٹیکل الائنس کافی اسٹرانگ ہے۔ جو گروپ طالبان سے خوش نہیں تھے اس کی لیڈرشپ سے، ان میں سے کچھ نے جا کے آئی ایس ایس کو جوائن کر لیا تھا، لیکن عام جنتا میں ان کے لیے وہابیوں کے لیے بہت زیادہ اسکوپ یہاں پہ ہے نہیں، اس لیے یہ اناؤنس تو ضرور کرتے ہیں مگر یہ اپنا پینٹ نہیں جما پا رہے۔ اس کی دو وجہ ہے، ان کے خلاف القاعدہ بھی ہے، الزواری ہے، اور دوسری طرف طالبان ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے ہی آئے۔ تیسری چیز یہ کہ پاکستان کا جو سمرتھن ہے طالبان کو، پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کی گتیویدھیاں وہاں پہ بڑھیں۔
افغانستان میں اپنی موجودگی درج کرانے کے بعد اسلامک اسٹیٹ کو امریکہ کے ہوائی حملوں اور افغان سینا کی زمینی کارروائی میں اپنے سینکڑوں لڑاکوں کو کھونا پڑا ہے۔ اتنا ہی نہیں، افغان طالبان کے ساتھ ٹکراؤ میں بھی اسلامک اسٹیٹ کے سینکڑوں لڑاکے مارے جا چکے ہیں۔ ان میں افغان پاکستان برانچ کے سنستھاپک نیتا حافظ سعید خان اور ان کے خاص آدمی بھی شامل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر امریکہ کے ڈرون حملوں میں مارے گئے۔ تو دو سال بعد افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ کے کتنے لڑاکے موجود ہیں؟ داؤد اعظمی،
افغانستان میں 1,000 اور 5,000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور نیٹو اور افغان حکام یا آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں جو اسلامک اسٹیٹ گروپ ہے ان کے 70% سے 80% تک افراد یا جنگجو دراصل وہ لوگ ہیں، انہوں نے پاکستانی طالبان تحریک کو چھوڑا اور داعش یا اسلامک اسٹیٹ کو جوائن کیا۔ پچھلے دو سالوں میں ان کے کئی لیڈرز اور جنگجو مارے جا چکے ہیں، ان میں حافظ سعید خان بھی تھا جو کہ پہلے پاکستانی طالبان موومنٹ کا ایک کمانڈر تھا، اور اس کے بعد انہوں نے داعش جوائن کیا۔
افغانستان میں اپنی موجودگی درج کرا کے افغان طالبان کو اسلامک اسٹیٹ نے سیدھی چنوتی دی تھی۔ ایسا کر کے اسلامک اسٹیٹ افغان طالبان لڑاکوں کو کھدیڑنا چاہتا تھا، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ طالبان القاعدہ گٹھ بندھن میں شامل لڑاکے اس کا ہاتھ تھام لے، لیکن استھانیہ سمرتھن و راجنیتک بل حاصل کرنے کی قواعد میں اسلامک اسٹیٹ کو زبردست سنگھرش کرنا پڑا، اور اس نے افغان طالبان سہت ہر کسی کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اسلامک اسٹیٹ کو اس سمے سیریا و عراق میں گٹھ بندھن سیناؤں سے لگاتار ہار مل رہی ہے، اس کے قبضے والے شہر اس کے ہاتھ سے چھوٹتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیا اسلامک اسٹیٹ مدھ ایشیا، چیچن اور چینی ویگر اگروادیوں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کمر آگا،
کیوں نہیں کریں گے، یہ ان کی کوشش ہر طرف ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی آنا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں بھی آنا چاہتے ہیں، ان کو 2 سال ہو گئے، انہیں نے بنائے ہوئے القاعدہ نے بھی اپنا ایک گروپ بنایا تھا ان ساؤتھ ایشیا, وہ بھی نہیں بہت زیادہ, اس کو بھی کامیابی نہیں ملی. آئی ایس ایس بھی کوشش کر رہا ہے لیکن ان کو ابھی تک بہت زیادہ کامیابی نہیں مل پائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیجیس ڈفرینسز کی وجہ سے. چچن میں ان کی تھوڑی بہت سپورٹ ہو سکتی ہے لیکن چچن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اور وہاں پہ بھی جو گروپس ہیں وہ حنفی انفلوئنس زیادہ. یہ ایریا جو تھا سینٹرل ایشیا سے جڑا ہوا یا کوکیشس کا جو ریجن ہے اس میں تمام میں حنفی سیکٹ زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ان کو یہ کچھ آپریشن تو ضرور کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ ان کو بڑی کامیابی نہیں مل پاتی. اسی طرح سے ویگر گروپ جو اتنا بھی ہے وہاں پہ چائنا میں, ترکمینستان جس کو وہ لوگ کہتے ہیں جو پرانا نام ہے وہاں کا, وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں ان کو زیادہ تر سپورٹ جو ہے طالبان کے گروپس کی حاصل ہے.
اسلامک اسٹیٹ افغانستان ہی نہیں پاکستان میں لگاتار حملے کرتا رہا ہے. افغانستان کی راجدھانی کابل میں حال کے دنوں میں کچھ اس نے بڑے جان لیوا حملے کیے. جولائی 2016 میں ایسے ہی ایک حملے میں کابل میں 80 لوگ مارے گئے. 3 مہینے بعد عاشورا کے موقع پر کابل میں کیے گئے حملے میں 30 لوگ مارے گئے. نومبر 2016 میں کابل کی مسجد پر ہوئے حملے میں بھی 30 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ان سبھی حملوں میں الپ سنکھیک شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. حال ہی میں پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ نے صوفیوں کے لال شہباز کلندر پر حملے کی ذمہ داری سویکار کی. تو اسلامک اسٹیٹ کے نشانے پر شیعہ یا پھر صوفی درگاہ ہی کیوں ہیں؟ قمر آگا,
یہاں پہ کنورجن آف انٹرسٹ بھی ہے. طالبان بھی ان صوفی سیکٹس کے خلاف ہے, القاعدہ بھی ان کے خلاف ہے اور ساتھ میں آئی ایس ایس بھی ان کے خلاف نظر آتی ہے. تو یہ لوگ وہی لوگ ہیں, وہ پرانے لوگ ہیں. لیڈرشپ کی ناراضگی کی وجہ سے انہیں آئی ایس کا نام لے لیتے ہیں اور آئی ایس کا برانڈ کا استعمال کرتے ہیں.
افغانستان اور پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ کا بھوشیہ سیریا و عراق میں اس کی دشا و دشا پر نربھر ہے. اگر سیریا یا پھر عراق میں اسلامک اسٹیٹ کمزور یا پھر ہارتا ہے تو دکشن ایشیا کی اور بڑھ کر وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟
تو یہ ایک پیراڈاکس ہے. اگر سیریا اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کو شکست ہوتی ہے تو اس کا ایک تو اثر پڑے گا ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں, داعش گروپ یا اسلامک اسٹیٹ کمزور ہوگا, لیکن اس کا ایک منفی اثر یہ بھی پڑ سکتا ہے کہ جو ہزاروں لوگ اس ریجن سے گئے ہیں اور سیریا اور عراق میں لڑ رہے ہیں اگر وہ واپس آ گئے تو اسلامک اسٹیٹ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں اور مضبوط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو نئے لوگ ملیں گے جو کہ ٹرینڈ بھی ہیں اور ریڈیکلائزڈ بھی.
اسلامک اسٹیٹ کی رڑنیتی پاکستان اور افغانستان سے باہر ابھی تک بھلے ہی سفل نہ ہو پائی ہو لیکن کھیتر میں اس سے سہانوبھوت رکھنے والے موجود ہیں. افغانستان, بنگلہ دیش, بھارت, قزاقستان, کرگستان, پاکستان, تزاکستان, ترکمینستان اور ازبیکستان جیسے دیشوں سے لوگ اسلامک اسٹیٹ کے سمرتھن میں لڑنے کے لیے سیریا اور عراق جا چکے ہیں. یہ ساری باتیں افغانستان کے سنگھرش کو اور جٹل بنا دیتی ہیں اور پورے کھیتر کے لیے دیرگھ کالین خطرے کی سوچنا دیتی ہیں.
دنیا جہان پرستت کر رہے تھے موہن لال شرما اور اس ہفتے کے اس انک میں آپ کی پرتکریا کا ہمیں انتظار رہے گا. اب کھیل سماچاروں کے لیے تو سمے نہیں ہے, چلتے چلتے سنتے ہیں مکھیہ سماچار.
بی بی سی سماچار. امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے راشٹرپتی بننے کے بعد پہلی بار کانگریس کو سمبودھت کیا. اپنے سمبودھن میں انہوں نے کینساس میں بھارتیہ انجینئر کی ہتیا کی نندا کی. تمل ناڈو میں آج سے ہزاروں دکانداروں نے کوکا کولا اور پیپسی بیچنا بند کر دیا ہے. افغانستان کی راجدھانی کابل میں 2 آتم گھاتی حملوں میں کم سے کم 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور قریب 35 لوگ گھائل ہو گئے ہیں. فرانس میں دکشن پنتھی امیدوار فرانسوا فیون نے راشٹرپتی کے امیدوار کی طور سے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے. چین نے سٹیل اور کوئلہ ادیوگ میں قریب 5 لاکھ کرمچاریوں کی چھٹنی کا اعلان کر دیا ہے. بی بی سی سماچار.
فی الحال آپ کا ہمارا ساتھ یہیں تک. آج کے کارکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا شاکر عالم نے. سبھی ساتھیوں کی اور سے میں راجیش جوشی اب آپ سے ودا لیتا ہوں اور اگلی ملاقات ہوگی بھارتی سمے کے مطابق کل صبح 6:30 بجے. تب تک کے لیے نمسکار.